ఖండం భ్రష్టం చ పీతవశనం బ్రజరాజశూను జస్యా కటాక్ష సర్వాస్తపి మూర్ఛితస్య తం రాధికా పరచరామి కదార్షి. తవైవాస్మి తవైవాస్మి న జీవామి త్వయా వినా ఇతి విజ్ఞాయ రాధికం నమామి. భజామి రాధాం అరవింద నేత్రాం స్మరామి రాధాం మనుస్మితాస్యాం వదామి రాధాం కరుణాభరద్రాం తతో మమ నాస్తి గతిర్న కాపి. సపరే హమ్నే మిలన్ మే విరహ్ అబ్ విరహ్ మే ఇస్మే రాధా జీ కా के प्रेम का उत्कृष्टता हमने बतलाई. उत्कृष्टता हमने बतलाई, इसमें दो एक उदाहरण हमने दिए. अभी मुझे एक एक चीज और याद आई, संक्षेप में बतलाऊंगा. पहले इस चीज को समझिए, संसार में जितने लोग हैं वो विषय में फंसे हुए हैं, उनमें से करोड़ों करोड़ों में से कोई एक आदमी किसी भी देवता देवी का भजन करता नहीं तो उसमें भी नास्तिक होते नहीं मानते. इन करोड़ों करोड़ों असंख्य लोगों में से कोई एक राम नृसिंह नारायण इत्यादि भगवत तत्वों का भजन, इन लोगों में से करोड़ों करोड़ों में बिरला कोई एक कृष्ण का भक्त, ऐसे करोड़ों करोड़ों भक्तों में से कोई एक एकांतिक रूप में कृष्ण का भजन करता, ऐसे ऐसे करोड़ों भक्तों में से कोई एक बिरला होता है जो ब्रज के जो राज कृष्ण है उनका तत्व जानकर शुद्ध गुरु का पदाश्रय कर संबंध ज्ञान के सहित अनर्थ रहित होकर के भगवान का नाम करता है, श्रवण कीर्तन करता है. इन लोगों में से साधन करते करते पौर से करोड़ों करोड़ों में से कोई एक सिद्धि लाभ करता है. इन लोगों में से जो सिद्धि भी लाभ करने वाले, उन लोगों में से बहुत कम ऐसे बिरले होंगे जो राधा जी की किंकरी बनना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते. जब तक कोई इस तत्व को नहीं जानेंगे कैसे ये करेंगे. जो संसार में मस्त हैं, देवता देवी की उपासना में स्वर्ग में मुक्ति में जो फंसे हुए हैं वो लोग तो नहीं जा सकते और नई चीजों को समझ सकते हैं. एक चीज मुझे याद आई, आज उनके दिन में राधा जी के आविर्भाव के दिन कृष्णचंद्र जी अपनी लीला समाप्त करने के बाद में अंतर ध्यान होने के बाद में कुछ विचार करने लगे और विचार करके राधा जी के भावों को ग्रहण करने के लिए लालाई हो राधा या प्रणय महिमा की दिशोवा में आस्वाद जैनाद्भुत मधुरिमा की दिशोवा मे. चैतन्य चरितामृत में कृष्णचंद्र जी ने बतलाया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, माने कविराज गोस्वामी ने कहने का समझे चैतन्य महाप्रभु जी या उनके रूप गोस्वामी इत्यादि परिकरण. कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, मैं संसार में सबसे सुंदर हूं. हमारे रूप को देख करके सारा जगत मुग्ध हो जाता है, पशु पक्षी की पतंग भी, किंतु मैं किसी एक का रूप देख करके मैं मुग्ध हो जाता हूं. वो कौन है? श्रीमती राधिका जी. जगत हमारा रूप देख करके उसकी हृदय सुशीतल उनका हो जाता है और किसी तरफ उनका चित्त नहीं जाता, किंतु मैं राधा जी को देखते ही मेरा हृदय जुड़ा जाता है, सुशीतल हो जाता है. विश्व ब्रह्मांड में हमसे कोई गुणी नहीं है, जितने सुंदर सुंदर गुण हैं वो हम में हैं, किंतु राधा जी का गुण देखते ही मेरा गुण छोटा हो जाता है. इस तरह से हमारे प्रेम के गुरु राधिका जी अपने मुख से उन्होंने कहा. किंतु यदि इसका विचार किया, इसलिए कृष्ण ने क्या किया राधा जी का भाव अंग और अंग कांति दोनों लिया। किसके लिए लिया इस पर गंभीर रूप से तुम लोग विचार करना। सब तो नहीं विचार कर सकते, बहुत दुर्लभ विचार कर सकते हैं। लाइन देने पर भी, दिशा निर्देश करने पर भी उस पर विचार करना बड़ा भारी कठिन है। मैं खुद उसको अनुभव करके मैं ये बतला रहा। कृष्णचंद्र जी ने ये भाव किस लिए लिया, राधाया प्रणय महिमा ये तीन जो लोग हुए इनको तृप्त होने के लिए, इनका आस्वादन करने के लिए आए ना। किसका भाव? नहीं ये मत समझो, यहीं पर कृष्णदास कविराज को चयन करें। जब मैं विचार करता हूं तो मैं विपरीत देखता हूं, उसके लिए नहीं। हमारे अंदर में कोई गुण खास है जिसको राधा जी देख करके मूर्छित हो जाती हैं, पागल हो जाती है। तो हमारे अंदर में वो क्या चीज है जरूर कोई चीज। राधा या प्रणय महिमा, राधा जी का प्रणय महिमा हमारे प्रति कैसी है, ये क्यों, वो हमारे अंदर में कोई चीज खूबी है इसलिए राधा जी की ऐसी स्थिति हो जाती है, प्रेम में विभूर हो जाती हैं, मिलन में विरह और विरह में हमको नहीं होता। राधा जी में वो नहीं है, हमारे अंदर में है वो, इसलिए राधा जी को ऐसा होता है। क्या हमारे अंदर में वो खूबी है ये राधा जी को इतना प्रणय हो जाता है कि दिशो राधा प्रणय महिमा कि दिशो वा अनयय वा अनया एव वा क्या अस्वादो जन प्रेम मधुरिमा, हमारे रूप की मधुर, हमारी वाणी की मधुरिमा, हमारे बंसी की मधुरिमा, हमारी हमारे गुणों की मधुरिमा, हमारी लीलाओं की मधुरिमा को राधा जी सर्वोत्तम रूप में आस्वादन करती है। तो हमारे मन में वो क्या चीज है जो खूबी जो वो आस्वादन करके पागल इस प्रकार से हो जाती हैं? क्या हमारे अंदर में वो खूबी है? नहीं तो उनको नहीं होता। वो हमारे अंदर में क्या खूबी है अपनी, और हमारे अंदर में हमारे इन माध्यमों को आस्वादन करके उनको कैसा सुख होता है, हमको वैसा सुख नहीं होता। तो हमारे अंदर में वो क्या खूबी है जिसको देख करके उनका इतना आनंद होता है जो पागल हो जाती है, वो क्या चीज है? बिना आश्रय के भाव लिए ये समझ में आना कठिन है। इसलिए मैं अपने को देख करके अपने ही मुग्ध हो जाता हूं, हमारा इतना रूप है। जैसे कि एक खंभे में, मणि खंभ में कृष्ण मक्खन लेकर के घूम रहे हैं यशोदा जी के घर में, और देख करके अपनी छवि देखी उस मणि स्तंभ में, देख करके बड़े आनंदित हो गए। अच्छा आज मैंने अपने जीवन में, छोटे से जीवन में मैंने आज देखा जी हमारे समान और एक ब्रज में हमारा सखा, इसको तो कभी देखा नहीं। देख करके मित्रता उसे बनानी चाहिए, मणि में जो स्तंभ में उनकी जो छाया आ रही है उसको देखकर मक्खन देना आरम्भ किया, तो वो भी छठ मक्खन निकालते उनको देने लगा। वो तो छाया जैसे करते है वो भी करने लगा, जब ये देने लगा तो वो भी, ये मुस्कुराने लगे तो ये भी मुस्कुराने, इन्होंने घुड़प दी घुड़प मैंने ऐसा जी ऐसे करता है तो उससे भी ऐसा अद्भुत। तो इतने में यशोदा मैया ने दूर से देख लिया, अभी तक ये नहीं समझ रहा था कि हमारी ये छाया है उसके साथ में ऐसे ये करता, किंतु यशोदा मैया ने वहीं से हंस दिया, हंसने अरे ये तो मेरी छाया है बस, झट यशोदा जी की गोदी में जाकर के गिर करके और उनके अंतर से अपना मुख छिपा दिया। तो कृष्ण में ये ऐसा एक सौंदर्य, ये खूबी है जो और किसी में नहीं है। राधा जी परम सुंदरी हैं, किंतु इनमें कुछ ऐसी मादकता है कृष्ण के रूप में, उनकी बंसी स्वर में, जो और कहीं इसी का अपने को आस्वादन करने के लिए इन तीनों भावों की जरूरत है। अरे समझ में, राधा जी का भाव नहीं, अपने इन तीन प्रकार की माधुरियों का आस्वादन करने के लिए राधिके व राधिका के समान इव राधिके व राधिका के समान अपने रूप गुण इस सब की माधुरिमा को आस्वादन करके सुखी रसास्वादन करने के लिए ही लोभ उत्पन्न हुआ। अच्छा तो अब लोभ उत्पन्न हुआ तो कैसे पूरा होगा, इसके लिए वो तीन राधा जी का भाव मंगनी उधार मांग, नहीं दिया तो चोरी किया, चोरी करके तब उसको फिर लेकर के राधा जी का भाव और उनका प्रणय, प्रणय माने महाभाव इत्यादि, ये भी यही भाव माने ये सब लिया और ले करके तब फिर महाप्रभु के रूप में आए। इसलिए कृष्ण में वो कोई चीज माधकता है, उनके सौंदर्य में वो माधुर्मा है, उनकी बंसी में वो माधुर्मा है, इसलिए अपने को ही आस्वादन करने के लिए राधिका जी का भाव अमूल लेकर के आए। दूसरी बात सवेरे एक मैंने बतलाया, विरह और मिलन का एक साथ हम लोग पढ़े हैं सुने हैं, थोड़ा सा एक लाइन दे देने पर आप लोग समझ जाएंगे, अंततः कुछ लोग तो समझेंगे। कृष्ण ने बंसी बजाई, पूर्णिमा का चांद, पूर्व का पूर्व दिशा एकदम लाल हो गई, कृष्ण ने अपने हाथों से मानो चंद्र ने अभी लेकर के उनके मुख में गुलाल डाल दिया। चंद्र ने कहा ये देरी क्यों कर रहा है, अरे हमारे वंश में जन्मा है तो हमारे ऐसा क्यों नहीं होता, जैसे हमने अपनी पूर्व दिशा को गुलाल लगा दिया, दोष नहीं है, ये पूर्व दशा मेरी स्त्री तो नहीं है, हमारे प्रति अनुरक्त है तो ठीक है, ऐसा ही करो। कृष्ण ने चंद्र से वो प्रेरणा लेकर के उद्दीपना लेकर के बंसी बजाई, उनकी इच्छा हुई, गोपियों की इच्छा नहीं। पहला श्लोक क्या है, भगवान अपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका रंतु मनश्चक्रे, रंतुम मनश्चक्रे, अपने मन में उन्होंने इच्छा की, इतना इच्छा हुई कि जो मैं आ रहा नहीं सकी, झट आ गई, अच्छा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी। अब उसने जोग माया की इच्छा से इन्होंने बंसी बजाई, सब स्त्रियां जितनी गोपियां हैं अपने घरों में सब कामों को छोड़ करके आजगमु अन्यो अन्यम और अलक्षितोद्यम, सब उद्यम सब घर के काम को छोड़ करके चली। जो नित्य सिद्धा थी तो वो तो पहुंच गई, और जो साधन सिद्धा में ऋषिचरी और थी वो रोक ली गई। मैं यहां पर बतला रहा हूं मिलन और विरह दोनों एक साथ, उसके लिए उदाहरण दे रहा हूं। अंतर गृह गता काश्चित गोप्यो अलब्ध निर्मगा कृष्णम तद्भावना युक्ता दद्धुर मिलित लोचना दुस्सप्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता अच्युता श्लेष निर्वित्या क्षण मंगल। अंतर गृह गता काश्चित, कोई गोपी घर में थी, सब काम छोड़ करके चल रही थी, किंतु उनके पतियों ने उनको आने नहीं दिया, रोक लिया जबरदस्त। उन लोगों ने क्या किया, कृष्ण को नापा, कृष्णम तद्भावना युक्ता, कृष्ण की भावना करते 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 तन्मय हो गई, और तद्धु मिलित लोचना, आंखों को बंद कर दिया, और बंद करके क्या किया, दुस्सप्रेष्ठ विरह तीव्रता, इतना तीव्रता हुआ जो कोटि कोटि कालकूट का बीज भी उतना नहीं होगा, इतना उनको तीव्र विरह ताप हुआ, और उससे उनके अशुभ जल गए। कृष्ण का विरह ताप भी इतना है प्रभावशाली, जितने प्रकार के अशुभ हैं हमारे लिए उनको दूर कर दें, किनके जिनको विरह ताप है, हम लोग को विरह ताप है, हम लोग को अनर्थ है, अभी वैष्णव अपराध संसार में आसक्ति अनर्थ तरह तरह के 16 अनर्थ हैं, एक एक अनर्थ चार प्रकार के, चारों ही चार चार प्रकार के 16 अनर्थ, इसके बाद भी और कितने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के वो सब अनर्थ, ये सब लिखे गए, ये सब अनर्थ हैं, यहां तक कि भाव अवस्था के पूर्व तक अनर्थ रहते हैं, भाव अवस्था में भी अनर्थ रहते हैं, प्रेम अवस्था में कृष्ण के दर्शन के बाद में आतंक रूप में ये दूर हो जाते हैं, इसके पहले तक रहेंगे।
तो ये किनके लिए? देखो कोटि कोटि वर्षों तक साधन किया है, दंडकारण्य में है या ऋषि चरी मुनि चरी, गोपियों के घर में, गोपियों के गर्भ से जन्म लिया है, और तभी उनको अशुभ है। अशुभ क्या? अशुभ है पति उनके उनके प्रति प्रेम इत्यादि जो करते हैं, घर में अभी कुछ काम है, उनकी शादी भी हो गई है, किसी को हो सकता है कि बच्चे भी हों, ये सब हो सकता है, ये अशुभ है इसके लिए। तो वो तो उनका जल गया। और ध्यान प्राप्ता कृष्ण को आंखें बंद करके और ध्यान करते हुए अपने आंखों के माध्यम से भीतर ले गई, और ले जाकर के प्राप्ता अच्युत श्लेष नृत्य कृष्ण को अपने भीतर में ले गई अंदर, और वहीं पर जोरों से आलिंगन किया उनको। यहां पर मिलन हुआ ना, पहले माला तीव्र विरह था, उसे अशुभ दूर हो गया, और ये जो मिली, मिलने से उनके जितने भी शुभ थे क्षीण मंगल और अमंगल, ये दोनों ही कृष्ण भक्ति के लिए बाधक जगत का मंगल अमंगल। उनका अशुभ जो था अमंगल वो तो दूर हो गया, कैसे? विरह से। हम लोगों में भी कृष्ण के भजन करने के लिए विरह उत्पन्न हो तो अनर्थ ये सब चले जाएंगे, अनुताप पाश्चाताप इत्यादि के द्वारा। और दूसरी बात, ये कृष्ण को भीतर ले जाकर के आलिंगन उनका दिया, इसलिए उनका क्षीण मंगला, उनके सारे अशुभ नष्ट हो गए, और वो सबसे पहले रासलीला में जाकर के कृष्ण से मिली। यहां पर दोनों चीजें हुई, एक तो विरह, ये विरह में कैसे मिलन हुआ, अपनी आंखों में लेकर के संपूर्ण रूप से उनको हृदय में बसा दिया, आलिंगन किया, ये तो हुआ मिलन। और उसके पहले था विरह, दोनों एक साथ में विरह और ये मिलन, और अंत में फिर जो अभी ये बतलाया ना हम सवेरे बाहर में मिलने में अंतर में खोना, और अंतर मिलने में बाहर में खोना, अंतर मिलने में बाहर से मिल करके मिलना चाहते हैं, और जब बाहर में मिलन होता है तो भीतर में उसे मिलना चाहते हैं। ये इसका ये उदाहरण एक है। इसलिए उनका फिर नित्य काल के लिए मिलन हुआ, ऐसा मत समझो जी वो मर गई, उनका शरीर छूट गया, ऐसा मत समझो। गोपियों के गृह में जन्म लेने वाला ये शरीर नहीं छूटेगा, क्योंकि यह अशुभ हुआ पड़ेगा कृष्ण से मिलने में, इसलिए वो सदा के लिए अब वो मुक्त हो गई, और पति लोग उनको नहीं रोक सकेंगे, कोई विघ्न बाधा भी नहीं होगी, जोग माया सब प्रकार से उनका सहाय करके उसमें ले जाएंगे। अभी सवेरे हमने एक श्लोक पाठ किया था, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी। सवेरे मैंने कहा था कि इसका हम इसकी व्याख्या करेंगे, अभी शुभानंद ब्रह्मचारी जी आपके सामने यहाँ पर इस श्लोक की व्याख्या करेंगे, तब फिर मैं इसके बाद में कुछ बोलूंगा, जरा व्याख्या करूंगा। जी का जन्म 15 दिन हो चुका है, अष्टमी के दिन नारद जी खोज रहे हैं, कृष्ण आएंगे हैं तो उनकी पराशक्ति भी जरूर साथ में कहीं आई होगी, वो खोज रहे थे गोकुल में, उसके आसपास में सब चारों तरफ में खोज लिया। उस समय उसके बहुत से पहले दिन, करीब करीब 10-20 वर्षों पहले, नंद बाबा और अपने भाइयों के साथ में, अपने पिताजी परजन्य के साथ में नंदगांव में रहते थे। ये नंदगांव नंदीश्वर पर्वत हैं, नंदीश्वर माने शंकर जी, नंदी जी के ईश्वर, नंदी जो बलद हैं बैल हैं उनके ईश्वर। बहुत दिनों तक इन्होंने तपस्या की, भगवान की आराधना की, हमारे सान्निध्य में आपकी लीलाएं हो। कहिए ठीक है, तुम पर्वत को बंद करके आना ब्रज में, कहीं हम वहीं पर हमारा सब कुछ लीलाएं होंगी। तो वो नंदीश्वर पर्वत माने वो शंकर जी हैं, उनकी सेवा के लिए आए हैं। किंतु वहां पर केशी का अत्याचार होने लग गया, असुरों का अत्याचार होने लग गया, इसलिए परजन्य बाबा अपने बेटों से कहा कि अब यहां रहना उचित नहीं। उपानंद जी उनके सबसे बड़े भैया हैं नंद बाबा के, उन्होंने कहा जी इस स्थान को छोड़ देना अच्छा है। सब लोगों ने विचार किया और उन्होंने अपने मित्र को बुलाया। उनके मित्र कौन? विश्वभानु महाराज। उनको बुलाया, परामर्श किया, उन्होंने कहा जी हम दोनों यहां से चल पड़े। इसलिए नंद बाबा अपने सब परिवार के साथ में, पूरा परिवार छकड़ों में भर कर घूमते घामते घामते गोकुल महावन में आए। और पास ही में यमुना के किनारे, उसे और मथुरा की तरफ में कौन सा गांव? रावल। रावल में विश्वभानु महाराज आ गए। पहले का कोई संबंध था, नंदगांव में, नंदगांव के साथ में यहाँ के ग्वालों का संबंध था, इसलिए उन लोगों ने नंद बाबा को बुलाया और रावल में विश्वभानु महाराज की ससुराल थी, इसलिए वहां से वो वहां पर आए, अपने ससुराल में वहां पर रहे। इधर में गोकुल में कृष्ण पैदा हुए यशोदा जी के गर्भ से, और ठीक 15 दिन बाद में श्रीमती राधिका जी, उनकी पराशक्ति लादनी शक्ति वहां पर आविर्भूत हुई। रावल में, बरसाने में नहीं, कृष्ण का जन्म गोकुल वहां नंदगांव में नहीं, गोकुल में हुआ। यद्यपि वहां पर भी जन्म लीलाएं, जन्माष्टमी वहां पर मनती है, गोकुल वहां नंदगांव में भी खूब मनती है, ठीक है मनाते हैं। और बरसाने में भी राधा जी का जन्म महोत्सव रावल की अपेक्षा लाख गुना अधिक होता है, क्योंकि उस स्थान का कुछ वैभव है। ये यमुना के किनारे निर्जन, यमुना इधर उधर दिशा बदलती है, आज उनका जन्म है, बरसाने में लाखों लोग गए होंगे, किंतु वहां पर कोई भी नहीं गया होगा, बहुत थोड़े से आदमी गए हैं, जो जानते हैं, जो विशेष रूप में जानते हैं वो रावल गए हैं। रावल माने ये उपाधि है किसकी? विश्वभानु महाराज की। गोपों की बड़ी बड़ी उपाधियां होती तो उसमें रावल, रावल माने राजा जैसा, जमींदार। तो ये नंद बाबा की अपेक्षा अधिक बड़े रावल थे, इसलिए उनके नाम कर साथ में रावल हुआ। तो वहां पर आजकल ये सब कुछ नहीं हो, जन्म इत्यादि कुछ नहीं होता, कोई विशेष रूप में उत्सव ही नहीं होता। कुछ लोग मथुरा के जाते हैं और वहां पर रसोई सोई बना करके भोग लगाया, विशेष करके भांग घोटा और भांग इत्यादि घोटते हैं, हाँ विशेष रूप से, नहीं तो उनका उत्सव कैसे होगा। भांग घोटते हैं और सब करते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्त चला गया तो वहां पर उनकी आराधना, प्रणाम, मंत्र इत्यादि के साथ में कीर्तन इत्यादि करते हैं। वहां पर दंगल इत्यादि करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, जिससे सब लोग आए। ये सब जो हमारे यहाँ जो हुआ वो सब वहां पर नहीं होते, बरसाने में होता है। वहां पर भी अब लट्ठा भी होती है होली के समय, अभी जन्म की लीलाएं होती हैं, वहां पर राष्ट्रधारी वो सब जाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सब लीलाएं करते हैं, स्मृतियां सब आती हैं। नारद बाबा, नारद ऋषि ढूंढने लग गए, ढूंढते ढूंढते इधर उधर चारों तरफ में देखा, बरसाने गए, नंदगांव गए, 84 कोस ब्रजमंडल में खोजते खोजते हार गए, कहीं कुछ पता नहीं चला। अंत में सोचा कि यदि गोकुल में कृष्ण आए हैं तो जरूर आसपास में कहीं होंगी। वो ढूंढते ढूंढते रावल में गए, विश्वभानु महाराज के यहाँ। तो जी आपको कोई संतान हुई है अभी हाल में? कहे हाँ हाँ हुई। क्या हुई? एक वो जब बालक उत्पन्न हुआ, कितने दिन हो गए? एक वर्ष के करीब हो गए हैं। कहाँ है? दिखलाया, श्री राम को दिखलाया। कृष्ण जैसा ही सांवला, बहुत ही सुंदर अलबेला, देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले जैसे और कोई संतान है या यही? तो नहीं, एक एक लाली हुई है, अभी केवल दो चार दिन हुए। लाली का दर्शन करा सकते हैं? मैं देख लूं और मैं उसका हाथ देखूंगा, हाथ देख करके बतलाऊंगा या इसका जन्म कैसे हुआ, इसके लक्षण क्या है, कैसी होगी, इसका जीवन कैसा होगा। बड़े प्रसन्न हो गए, जाते जैसे बिना बुलाए ही इतने बड़े महात्मा आ गए नारद जी, इसको जरूर अपनी लड़की को दिखलाना, इसका लग्न और राशि नक्षत्र देख करके इसका भविष्य बतलाएंगे, ये कैसी लड़की है। ठीक, घर के अंदर मिले गए, लाली छोटी सी पलंग पर पड़ी थी, मैया वहीं पर बैठी थी, लेकर के दिखलाया। उन्होंने कहा जवाब, लड़की तो बड़ी भली है, लाली आपकी बड़ी सुंदर है, तो एक बात कीजिए, तो आप लोग जरा यमुना का पानी और फूल, स्वस्तिक, कुमकुम, दुबकी घास, ये सब चीजें ले आओ, मैं तब तक यहीं पर हूं। बस वो भी कृतिका जी उठी वो कुछ संग्रह करने के लिए, और विश्वानु महाराज जी संग्रह करने के लिए उठे, दोनों को बाहर में चलाकी से भेज दिया, ये लोग समझ नहीं सके और स्तुति करने लगे। उनको देख रहे हैं, इतने में ललिता, विशाखा, चित्रा इत्यादि सभी सखियां वहां पर। ललिता जी ने कहा क्या कर रहा है, जल्दी से निकाल स्तौन करो यदि कुछ चाहते हो। तो उन्होंने स्तव स्तुति करनी आरंभ कर दी। इतने में देखा क्या, परम सुंदरी श्रीमती राधिका जी अपने स्वरूप में प्रकटित थी, जैसे कृष्ण लीला के समय में होती है किशोरी के रूप में। यह देख करके एकदम आश्चर्यचकित और मुग्ध हो गए, कुछ नहीं कर सके। इतने ललिता जी ने कहा जल्दी से इनसे कुछ प्रार्थना करो, और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने आरंभ की तब तक वो अंतर ध्यान मिले। ललिता जी ने कहा इतना जल्दी नहीं, ब्रज में कहीं जाकर के गोवर्धन के किनारे कहीं तपस्या करो, आराधना करो, एक दो दिन नहीं, हजारों वर्षों तक तुम आराधना करो, तब कहीं जाकर के ये दर्शन देंगे। तब ललिता जी के इच्छा से और उनके इंगित से वो गोवर्धन के पास में, गोवर्धन और राधा कुंड के बीच में एक स्थान है नारद कुंड, वो पीछे से नाम पड़ा, गिरिराज जी के पास ही में, वहां पर सुंदर सरोवर, ऊंची जमीन है, वहीं पर जाकर के उन्हें आराधना की। जब उनको हजारों वर्ष लग गए, तब हम लोगों को पूछो तो हम लोग किस स्थिति में हैं जो उनकी आराधना करेंगे, और कितना, इधर एक दिन में नहीं मिलेंगी। गणेश और शंकर जी की उपासना करने से आशुतोष है, वो जल्दी दे देंगे, क्या दे देंगे जिसमें रस पच करके तू मरो। किंतु ये नहीं, कृष्ण का मिलना भी सहज हो सकता है, किंतु बिना राधा जी की कृपा के कुछ भी संभव पर नहीं है। इसलिए शास्त्रों में राधा जी का बहुत सुंदर से वर्णन किया है। तो ये नारद जी तपस्या किया वहां पर और फिर उनको दर्शन किया। इसलिए श्रीमद् भागवत इत्यादि में और दूसरे शास्त्रों में, विशेष करके रूप गोस्वामी इत्यादि के ग्रंथों में ऐसा देखा जाता है कि कृष्ण भी उनकी आराधना करते हैं, राधा कुंड में करते हैं। अगर पुरपी यत्ना तत्व्या प्रसादा प्रसर कृत कटाक्ष प्राप्ति काम प्रकाम अनुसर जद उच्च स्नान सेवानुबंध तदपि राधा कुंडम आश्रय। कृष्ण भी वहां पर निमित्त रूप में रह करके सवेरे शाम दोपहर को स्नान करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तव स्तुति करते हैं। किस लिए? उनकी कृपा की कोर पाने के लिए ललक करके वहीं पर रहते हैं और नाना प्रकार के व्रत इत्यादि करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। जब कृष्ण ऐसा करते हैं तो हम लोगों के लिए कर, यदि राधा जी प्रसन्न हो जाएं तो कृष्ण अपने आप दर्शन दे दे। राधा जी की कृपा नहीं होगी तो नहीं होगा, मूढ़ लोग केवल कृष्ण का भजन करते हैं, और जो बुद्धिमान है राधा जी का भजन करके उनके माध्यम से जुगल किशोर की सेवा करते हैं। रात अधिक हो गई है, आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। उनके संबंध में कल परसों अभी हम लोग बोलेंगे और पाठ करेंगे। आज राधा जी का आविर्भाव तिथि है, बड़ी प्रसन्न होंगी, इसलिए हम लोग कृष्ण नाम करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण का नाम किस लिए करते हैं? इसमें हरि कृष्ण और राम नाम, ये तीनों कृष्ण के नाम है, इसलिए ये इस नाम को करते हैं कि राधा जी प्रसन्न हो जाए। और उसी में राधा जी का नाम छिपा हुआ, वो किस लिए करते हैं? हरा माने क्या? कृष्ण के चित्त को भी हरण करने वाली राधिका जी, इसलिए उनका नाम है हरा। और उसमें कृष्णा कर दो तो कृष्णा किसका नाम है? किशोरी जी का। और रमा किशोरी जी का, वो तीनों नाम राधा जी के ही उसमें है, हरे कृष्ण वाले में। इसलिए राधा नाम करते हैं इसलिए कि कृष्ण प्रसन्न हो, और कृष्ण नाम प्रसन्न करते हैं जिससे कि राधा जी प्रसन्न हो, इसलिए हम दोनों नाम करते हैं। ये कहीं कहीं पर ऐसा लिखा गया है कि राधा जी में विरह में तृप्ति हुई कृष्ण का दर्शन पाने के लिए इस नाम को करती हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा कहीं लिखा है, हमने कहीं ऐसा पढ़ा है, देख लाएंगे पीछे। ये राधा जी के उच्चारित ये विरह में ये कृष्ण नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण
तो वो हो जाता है, भावना के द्वारा सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये कृष्ण नाम जो महामंत्र है इसमें सब कुछ देखते हुए, राधा और कृष्ण देखते हुए, बड़े प्रेम के साथ में, संबंध के साथ में भजन करें, गुरु वैष्णव के आश्रम में भजन करें, तब तो होगा भाई। और गुरु वैष्णव का आश्रय ले या भजे कृष्ण नहीं करे तजे, आर सब मरे आकर। इसलिए ऐसे गुरु वैष्णव का अनुगत्य करके, हमारे रूप गोस्वामी का अनुगत्य करके, और हमारे गुरुपाद पद्म से लेकर के ऊपर तक जितने भी आचार्य हैं उनका आश्रय लेकर के हम भजन करेंगे। गुरु परंपरा नहीं छोड़ना है, नहीं तो लड़ी एक, उस एक हार में से एक लड़ी गई तो सभी टूट करके बिखर जाएगा। इसलिए श्रीमती राधिका जी के अनुगत्य में ही हम जुगल किशोर की सेवा करेंगे। अब समय हो गया है, लोगों को भी जाना है, इसलिए अभी हम लोग एक कीर्तन करो, कीर्तन करके झूलन, श्रावण का झूला महीना है, उसमें वृंदावन यहाँ राधा और कृष्ण के डोले में झूले, उस समय में बरसाने में राधा कुंड में वृंदावन में खंडी बन में झूले लगे, महीने भर झूले, विशेष करके पांच दिन, और पंचम दिन पूर्णिमा के दिन बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव हुआ, सारा प्रजा आनंद में डूब गया। अभी उसी का महोत्सव चल रहा था तब तक कृष्ण ने मथुरा में आविर्भूत होकर और गोकुल में जन्म लेकर के विविध प्रकार की लीलाएं की। उनका उत्सव अभी समाप्त नहीं हुआ था, इतने में श्रीमती राधिका जी कहां रावल में आविर्भूत हुई, विश्वभान महाराज के घर में, और उनका भी
कल उनका आविर्भाव महोत्सव इत्यादि हुआ। कुछ दिन, एक डेढ़ महीने कुछ विश्राम रहेगा, एक महीने करीब, एक महीने आठ नौ दिन, इसके बाद ही में कार्तिक का महीना आ जाएगा। कार्तिक का महीना आएगा और फिर ठीक है, एक महीना ये राधा जी की उपासना में जाएगा। इस समय में हम लोग उनके विशेष विशेष लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे और नियमित पूर्वक उनका साधन और भजन करेंगे। थोड़े दिन में ही पुनः व्यास पूजा उपस्थित होगी और वहीं से आरंभ हो जाएगा नवतीर्थ धाम परिक्रमा का आयोजन। अब सब लोग वहीं पर खींच जाएंगे, जितने भक्त हैं महाप्रभु जी के। इस प्रकार से भगवान और वैष्णवों ने ये सब सजाया तो है, और इतने पर भी यदि हम लोगों का मन भक्ति में आकृष्ट नहीं होता है तो हमारा यह परम दुर्भाग्य है। गुरु जी कहते थे कि मैंने घड़ी में तीन चाबियां रखी हैं। एक बार चाबी देता हूं महाप्रभु जी के जन्म के समय में तो वो चार महीना चलती है करीब करीब, और उसके बाद में फिर रथ यात्रा आ जाता है, रथ यात्रा में एक और चाबी दे दी, और फिर कार्तिक के महीने में एक बार और चाबी दे दी। भक्तों को आयोजन करके हरि कथा सुना करके उनको भक्ति में लगाने लायक चित्त करते हैं। कितना कष्ट करके ये लोग हम लोगों के लिए ये सब का आयोजन करते हैं, उसमें दो चार आदमी का भी यदि चित्त भगवान की भक्ति में लग जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। दो चार आदमियों का मिलना भी बहुत कठिन है, मिलते तो बहुत हैं किंतु आंतरिक रूप से अन्नाभिलाषिता वाला लक्षण लगाने पर देखा जाता है कि बहुत कम। तो सारा प्रयास ये सब वैष्णवों का, गुरु वर्गों का, हमारे ऋषि मुनियों का यही रहा, इस जीवन में आकर के हम लोग भगवान का शुद्ध रूप में भजन कर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके आए, उनके परिकर लोग विशेष करके आए। जो कहीं शास्त्र में परिस्फुट रूप में लिखा नहीं था, व्यक्त नहीं किया गया था, उसको चैतन्य महाप्रभु के परिकरों ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। शास्त्रों में या भागवत में भी राधा जी का नाम लेने में साहस सुखदेव गोस्वामी को नहीं हुआ, बड़े गुप्त रूप से रखा। कलयुग में रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा जी का चरित्र और महिमा किले कितने खुले रूप में दी है, चैतन्य चरितामृत में दिया है, वो विदग्ध माधव, ललित माधव इत्यादि ने जो दिया है, कहीं भी शास्त्र में ऐसा परिलक्षित नहीं होता। इसलिए हम लोग जो एकत्रित हैं ये करोड़ों करोड़ों लोगों में से हैं, किंतु करोड़ों करोड़ों लोगों में से भी अभी दंभ अभिमान अन्याभिलाष कुछ लगा हुआ, कुछ उद्देश्य तो कुछ स्थिर हुआ है, भक्ति हमको चाहिए। किंतु भक्ति चाहिए जाने से भी तो नहीं, उसमें कुछ अन्याभिलाषिता और इधर उधर की चीजें लगी जाती हैं तो उसके मिलने में बहुत देरी हुई, बहुत देरी। इसलिए हम लोगों को एकांतिक चित्त रूप में इसी चीज को ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए।
विचार करके हम देखना चाहिए कि हमारे भक्ति में जो अनुकूल है उसी को ग्रहण करें और प्रतिकूल का सर्वथा त्याग करें। केवल संकल्प लेने से ही नहीं, उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित होना होगा। ये हम अनुकूल जो केवल होगा वही इस जीवन में हम करेंगे, हम दूसरा कुछ भी नहीं, और ऐसा करेंगे भी भक्ति में जो अनुकूल है उसको ग्रहण करेंगे, भक्ति में जो प्रतिकूल है। अनुकूल में भी 64 प्रकार की जो भक्ति है ये अनुकूल है, किंतु इस अनुकूल में भी कुछ प्रतिकूल है जो अपने भावों के विरुद्ध है। ऐसे शास्त्रों उल्लिखित नियमों को भी छोड़ करके आगे बढ़ना, तब फिर भक्ति होगी। इसमें स्वरूप गोस्वामी का अपना जो विचार है, अपना जो स्वभाव है, अपनी जो सेवा है वो रूपानु कहलाती है, उसको समझने की चेष्टा हम लोगों को करनी चाहिए। नहीं तो इस संप्रदाय में आने का कुछ भी महत्व नहीं, यदि इस चीज को हम लोगों ने नहीं समझा तो इस जीवन में अंततः हम लोगों का उद्देश्य ठीक हो जाना चाहिए, छोड़ने की इच्छा भी होनी चाहिए प्रतिकूल। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, इस जीवन में आकर के बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल हैं, जैसे कोई रोग हो गया, शोक हो गया, अर्थ की कमी है, और भी तरह तरह की समस्याएं हैं, किंतु उसके लिए हम नहीं आए, उसमें जीवन मत बिगाड़ो, बस ये ठीक करो कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, साधन का उद्देश्य क्या है, और उसी में तत्क्षणात् निष्कपट हृदय से लग जाओ और सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। इसलिए हम लोग जो नहीं पढ़ना चाहिए साधारण के बीच में, उसका भी हम लोग बात कर रहे हैं, विशेष करके ये सब समय स्मरण रखना चाहिए। साधारण जनसभा में गोपियों का और उन्हें मुखिया इत्यादि का बाजार हाट घाट माट में मत वर्णन करो, न कपूर की बात ही उड़ जाएगा, लोग हंसेंगे, लोग समझेंगे नहीं। इसलिए जब तक अधिकारी ना हो तब तक ये सब चीजों की चर्चा एकदम बंद रखनी चाहिए। उस समय गीता भागवत के दूसरे मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है ये सब पर अधिक बोलना चाहिए, और ये सब चीजों को गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा फिर भक्ति नहीं होती या दूसरे लोगों के प्रति अपराध हो जाता है। जैसे अयोग्य को हरिनाम देना अपराध है, ऐसे अयोग्य को हरि कथा सुनाना भी ये अपराध है। इसे देख सुन करके जैसा हो उसको उस रूप में करना चाहिए। पहले योग्य लोग बने, श्रद्धा हो, ऐसी कथा सुने। अब मैं आप लोगों का नित्य प्रसंग के मैं चल रहा हूं। कौन सा श्लोक था तो हो गया है। अच्छा, वृंदावन में वृंदावन का अर्थ सनातन गोस्वामी ने क्या किया याद है? वृंदावन का अर्थ क्या किया सनातन गोस्वामी ने? क्या बोलो, लटपट तो बोले किंतु अपने बोलिए जल्दी। कैसे कैसे रक्षण
अपने प्रेम के द्वारा सबका पालन पोषण करते रक्षा करते हैं, तो करने पर
यह वृंदावन यहां पर व्यक्ति उनको मान लिया गया। वृंदा ही जो रक्षा करता है, जो बन पालन करता है, प्रेम प्रदान करता है कृष्ण का, गोपियों का, उसको कहते हैं वृंदावन। मूल मुनि लोग वृंदावन के मुनि लोग कैसे हैं? कैसे हैं भाई? ये कैसे मुनि हैं? ये कोमल कोमल पत्तियां क्या हैं? वो तो वो मुनि लोग के, ये यहाँ के मुनि वालों के लिए ये कोमल कोमल पत्ते क्या हैं? अरे भाई तो वो तो उन लोग थे, इस मुनि वृंदावन में जो रहते हैं ये मुनि लोग भगवत धर्म पारायण, ये कौन पत्तियों में? अरे उसके पत्तियां क्या हैं? शांत दास सत्य वात्सल्य विशेष करके ये हरी हरी बड़ी कोमल मधुर ये पत्तियां हैं, उन पत्तियों की आड़ में ये कृष्ण को देखते हैं, उनके माध्यम से देखते हैं। हाँ अब तो फटर फटर होने लगे। बहुत सी वेद की शाखाएं हैं, उन वेद की शाखाओं में से जो गोपाल तापनी, ब्रह्मजामल, राधा उपनिषद आदि ये सब जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में भी श्रीमद्भागवत की शाखा सबसे श्रेष्ठ और मधुर, इन्हीं में वो फल लगता है, इन्हीं की डाल पर वो सुख पक्षी सब, इसमें तीन प्रकार के अधिक जो कीर्तन नित्य श्रवण और स्मरण, ये तीन में प्रधान है, ये तीन। धृत मौना में अंतिम शब्द का जो अर्थ मतलब अंतिम बात जो बतलाया, वो प्रेम में मूर्छित हो जाने के कारण ही वो मौन हो जाते हैं, वो क्या धृत मौना जतचित्ता तीन उनके लक्षण, ये मूर्छा के कारण प्रेम की मूर्छा में ये सब तीन हो जाते। धन्यास्ममूढमतयोऽपि हरण्येता ज्ञानन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधौ विरचितां प्रणयावलोकये। धन्यास्म, इसकी तो बहुत बार व्याख्या हो चुकी है, बहुत बार, फिर भी रिपीटिशन हम लोग उसको करते हैं। ओ गोपियां कृष्ण भाव में विभावित होकर के देख रही हैं, कृष्ण एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं और वो देख रही हैं कि बहुत सी हिरणियां आ गई और उनके पीछे पीछे कुछ हिरण हैं कृष्ण सार, जिन पर कृष्ण काले काले धब्बे हैं उनके पीठ पर चारों तरफ, हिरणियों के पीछे पीछे आ रहे हैं, वो लोग कुछ इधर उधर भी देख रहे हैं, श्रेणी की तरफ भी देख रहे हैं, कृष्ण की तरफ में देख, उनकी दृष्टि चारों तरफ में है और हिरणियां एकाग्र चित्त से स्थिर चित्त से कृष्ण के मुखार बिंद पर ही अपनी दृष्टि लगाई थी, उनके नेत्र अपलक हैं, दृष्टि भी एकदम स्थिर है, कहीं इधर उधर नहीं, वो विचार कर रहे हैं, कृष्ण सार वाला वो विचार करता है किंतु ये इनका विचार भी नहीं रह गया, एकाग्र चित्त से उसमें लौट गया, उसे देख करके गोपियां कहेंगे वो धन्य है, ये मूड होने पर भी धन्य है, इनको अपनी मृत्यु का भय नहीं, कृष्ण के साथ में तो वो मारी नहीं जाएंगी किंतु और जगह जगह होता तो ये मारी जाते, इसलिए ये मूड है, यदि किसी हिरणी को पकड़ना या मारना होता है तो लोग वेणु बजाते हैं, जैसे सांप को, सांप को पकड़ना होगा तो वो वेणु क्या बीना बीन बजाते हैं और उसके शब्द से मोहित होकर के वो ऐसे ऐसे करता है, उसके पीछे पीछे वो भी हिलता रहता है और उसे झट पकड़ लेते हैं। ऐसे ही हिरणी को भी पकड़ने के लिए खूब वीणा बजाते हैं, वेणु बजाते हैं और हिरण आकर के एक तक कोई सहारा लेती हुई जहां थोड़ी सी हार उस पर दिया लठिया पर वो गिर जाती है, उसको पकड़ना जल्दी से उठ गई ऐसी मुंह जाती है। देखो उसको हिरण को बारहसिंघा भी कहते हैं, वो बाघ से एक हाथ अधिक छलांग मारती है। बाघ यदि एक ही साथ कूद जाता है तो ये उसे एक हाथ अधिक कूदती है, इसलिए साजी नहीं पकड़ पाता। उसकी सिंहें अटक जाती हैं यदि कहीं लता गुल्म में, तभी वो पकड़ लेता है, नहीं तो जंगल में एक भी हिरणी नहीं होती। प्रभु ने ऐसे ही सब चीजों को बनाया, इसलिए ऐसी मूल हिरणिया होने पर भी कृष्ण के इस मोहन वेणु को सुनकर अपने पति के साथ मिलित होकर विचित्र वेशधारी कृष्ण जानंद नंदनम उपत्त विचित्र वेशम, विचित्र माने बरहा पीड़ित, उस लोग निकट में उपस्थित होकर के प्रणय दृष्टि से विरचित उपहार उपहारे तहा पूजा कर लेते हैं। प्रणय दृष्टि से ये दृष्टि से ही यही उपहार उनका है और कृष्ण से उसी से अर्चन कर उनकी पूजा कर। सनातन गोस्वामी जी की चीज ये हम लोगों को धिक्कार देने के लिए है ना? एक मूढ़ हिरणी जो वन में रहती है वो भी कृष्ण की तान सुनकर के, बंसी की तान सुनकर के मुग्ध हो जाती, और हम भागवत रोज सुनते हैं और हमारी चित्त वृत्ति कृष्ण में नहीं, फिर हम जहां के तहां रह जाते हैं। इतना परिश्रम से सुनते हैं और जहां सीढ़ियों से नीचे गए या इस पाठ पर उतर जाए, बहुत से लोग हैं जो इसकी चिंता ही नहीं करेंगे, संसार की चिंता ही करेंगे। हम लोगों में भी ऐसा, इसलिए हम लोगों को धिक्कार देने के लिए ये कह रहे हैं। हम लोग को ठीक ऐसे ही निष्कपट होकर के सारी चीजों को छोड़ करके श्रीमद भागवत और चैतन्य चैतामित ये वेणु की ध्वनि है कृष्ण की, एक महाप्रभु की और एक है कृष्ण, इसको सुनकर के अपने हृदय को ऐसा ही बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं यहां पर पूर्वोक्त जो पशु पक्षियों की बात जो कही थी प्रायो बतांग मोहन मुनयो विहगा, जो पशु पक्षियों की बात कही थी उनसे भी विशिष्ट ये पशु हैं जो कृष्ण के गोचारण के समय में पशुओं के साथ में कभी मिल करके ये हिरण भी कभी कभी चलते हैं। जब कृष्ण वेणुवादन करते हैं तो पशु चलती हैं गायें, और गायें बछड़ों के साथ में ये हिरणियां भी पीछे पीछे हो लेती हैं, और हिरणियों के पीछे पीछे हिरण भी उनके पीछे पीछे चल लेते हैं। इसलिए अब इनका वर्णन कर रहे हैं, इसके बाद में हिरणियों से भी अधिक श्रेष्ठ हैं गायें, उनके बछड़े उनका वर्णन कर रहे हैं। तो जो गौओं के साथ में कृष्ण के वाणी को सुन करके उसके पीछे पीछे चलती हैं, उनके संबंध में ये बतला रहे हैं। कृष्ण की वेणु की आवाज चल रही है अभी भी संतों के मुख से, गुरु जी के मुख से, वैष्णव के मुख से, किंतु हम वैसा नहीं कर पाते, चेष्टा करनी चाहिए। विशेषकर हमें सोचना चाहिए आधा जीवन तो हो ही गया, आधा जीवन तो एक तरह से हो ही गया, अब थोड़ा सा जीवन उसमें भी एकाग्र नहीं हो सके। और तीन चीजें कनक कामिनी प्रतिष्ठा, तीनों को प्रतिष्ठा चित्त को हटा करके भगवान की इन कथाओं के अनुसंधान में लगाना हमारा पहला और परम और एकांत कर्तव्य है। तो कोई सखी करिए धन्यास्म मूढ़ मत, सखीरी हम लोग बड़ी दुर्भाग्य, हम लोग धन्य नहीं। धन्य कौन है? ये हिरणिया है। और बाकी जिनको कृष्ण में प्रेम नहीं है उनका जीवन सार रहित असार है, व्यर्थ है। इस वृंदावन में विशेष करके इस ब्रजमंडल जिनको कृष्ण प्रेम नहीं है, देवता देवियों का भजन करते हैं, वृंदावन में रह करके हम ब्रह्माष्टमी का प्रचार करते हैं और उसी में दिन रात लगे हुए हैं। गुरु जी ने एक युक्ति थी, आप अभी मैं थोड़ा सा देख रहा था, अनुवाद कर रहा था, उसमें देखा मायावाद में या अद्वैत बात में साधन सिद्ध साधन का दोष, सिद्ध साधन का दोष ये दार्शनिक शब्द है। क्या इसका तात्पर्य? जो चीज सिद्ध है उसके लिए साधन करने की क्या जरूरत है? हमारे हाथ में सोना है, जितना हम चाहते हैं, फिर सोना के लिए साधन करने की क्या जरूरत? हमने एमए पास कर दिया, ये सिद्ध हो गया ना, तो फिर से कख गग आरंभ करने की क्या जरूरत है? तो इसको कहते हैं सिद्ध साधन, सिद्ध का साधन। अच्छा, कहते हैं अली गली चारों तरफ बाजार में हाथ में वो बोलते हैं कि हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। अरे भाई तू ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म के लिए तुम साधन करने के लिए कहता है कि मैं साधन करूंगा ब्रह्म को, फिर साधन की क्या? तुम तो ब्रह्म ही है, आ रहा है समझ में? अरे तू कहता है कि तू ब्रह्म है तो फिर इसलिए साधन की जरूरत क्या? तुम तो ब्रह्म है ही है, तुम ब्रह्म नहीं होता तो उसके लिए साधन करता, किंतु तुम ब्रह्म है ही है फिर उसके लिए साधन करने की जरूरत है? तो तू क्यों कहता है जैसे मैं ब्रह्म हूं? कहता क्यों मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं ये मत कहो, सर्वम खोली दम और मम तू कहता, तो फिर तुझे साधन की जरूरत क्या? कुछ मायावाद की जीवनी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्ति स्थिर नहीं रहेगी। जो कोई केवल अभी साधन के समय में केवल इस पर जोर देते हैं रस तत्व के ऊपर और उसको जानते ही नहीं है तो सिद्धांत पक्का नहीं होता। इसका फल यह होता है कि कोई मायावादी आकर उसके हृदय को परिवर्तन करता, चुटकी बजाते ही मीठी टीठी बातें करके। इसलिए इसको भी जानना जरूरी है अपना तत्व इत्यादि। सिद्धांत ज्ञान के ऊपर में प्रतिष्ठित ये रसमयी भक्ति है। गोपियों को निरामूर्ख मत समझो, उद्धव जैसे लोग को चुटकी बजा करके एक सेकंड में उनको कहां से कहां पहुंचा देंगे, उनका उनके दिमाग को भी था नहीं पाता है कि गोपियां कितने तत्व में डूबी हुई हैं। उनको तो क्या स्वयं पर ब्रह्म कृष्ण को भी आश्चर्यचकित कर देती हैं ये गोपी अपने विचारों से। निकान एक हुतोषो गयो शाम को आ रहा थे उधो मन न भयो। उधो ने कहा कि भाई तुम चिंतन करो, कृष्ण का ध्यान करो। मैं उधो तुम बड़ा भारी सौभाग्यशाली, तुम्हारे मन 20 प्रकार के, हम दुर्भाग्य बस एक ही मन, और मन जब कृष्ण गए ब्रज में तो लेते गए, अब किसकी आराधना कौन करे तुम ही बतलाओ। उद्धव दिमाग से खुजलाने लगे। इसलिए इस सिद्धांत के जानने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वृंदावन में जो हिरणियां हैं, ओ हम लोगों के लिए ये दुर्लभ है उनका जैसा सौभाग्य पाना। स्वच्छंद गति से चलती हैं, हमारे पैरों में बेड़ियां हैं, बेड़ियां दिखाई नहीं पड़ती किंतु बहुत बेड़ियां हैं। इन बेड़ियों को काट करके आना बड़ा सारी कठिन है। एक तो भगवान ने धैर्य क्यों दिया? नहीं जाना चाहिए हम ये धैर्य इत्यादि जो है ये बेड़ियां हैं। गुरुओं की शिक्षा ये उनका डर लोक लाज कूल कानी और ये आर्य धर्म सब बेड़ियां हैं। इनको लांग करके आना कृष्ण का दर्शन करना बड़ा भारी कठिन है। सबसे लांग लो, किंतु पति और अपने कहे जाने वाले जो कुटुंबी है, परिजन है, समाज के लोग हैं, ये सभी लोग इसका विरोध करते हैं। और इन हिरणियों को उसका पति स्वयं उसके पीछे पीछे चलता है, ये निर्भीक होकर के कृष्ण का दर्शन करो। इसलिए हम लोग का ऐसा सौभाग्य नहीं। ये हिरणिया कृष्ण के वेणी गीत को श्रवण करके हमारे प्रियतम नंदन नंदन हमारे जो प्रियतम नंदन नंदन है उनके पूजा करते हैं, और हम डायरेक्ट रूप में उनकी पूजा कभी नहीं कर सकती। हिरणी कैसे पूजा करती है? हियर इन दिस वेन्यू वे सनातन गोस्वामी इज टेलिंग दैट वी आर नॉट सो मच फॉर्चुनेट एज गोपीज आर। नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डियर, नो मैरिज, नो शेम। एनीवन इज नॉट टेलिंग दैट यू शुड नॉट गो टू कृष्ण, दे कैन गो डायरेक्ट देयर, बट वी कैन नॉट गो। देयर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स एंड बाइंडिंग्स ऑन एवरी आवर बॉडी इज ऑल्सो ए बाइंडिंग एवरीथिंग। हाँ, तो वो कैसे पूजा करती हैं? वो पशु जाति स्वभाव तो विवेकहीन है, कैसे मेरी मृत्यु हो जाएगी कि नहीं होगी, क्या होगा हम नहीं समझते, इसे वो विवेक विवेकहीन है। दिस एनिमल्स आर सो मच अनवाइज, दे कैनट एसोसिएट विथ वैष्णवर, दे कैनट हियर हरिकथा, दे कैनट मीट साधुसंग एनीथिंग। इसलिए विवेकहीन है, दे आर सो फुलिश। किंतु ओ कृष्ण ने इनको वंचना नहीं की, कृष्ण की सेवा से ये वंचित नहीं हुई कभी। यदि एक आदमी मूर्ख रहे भी, कुछ भी ज्ञान नहीं है, और कृष्ण का नाम करता है, भजन करता है, तो वो सर्वोत्तम है। हमने ये अनुभव किया, हमारे गुरु भाई थे, उनको लोग पागल समझते थे, और वो यहाँ पर वृंदावन नवद्वीप से यहाँ आए, बोलना भी नहीं जानते हैं, हिंदी बंगला भी नहीं बोल सकते, तो हिंदी की तो बात, और बड़े बड़े अफसरों के पास में चले जाते और उनकी चेयर पर बैठ जाते, कहते कृष्ण भजन करो, कृष्ण भजन करो, ऐसे अंग्रेजी से शिकायत, नहीं नहीं मंगल नहीं, नहीं मंगल नहीं, अटपटी भाषा में जाते, और वो लोग हाथ जोड़ करके उनके सामने में खड़े हो जाते और पगड़ी लंबी बांधते थे, आंख से कम देखते थे, उम्र भी कुछ हो गई थी, किंतु लोग उनको आदर, हम लोग भी आदर करते, हम लोग उनको चिढ़ाते भी थे कभी कभी, कभी गुरु महाराज सो रहे थे चुचुड़ा में, हम लोग चिढ़ाते थे और वो खुद हल्ला कर उठता है, तो गुरु महाराज उठ करके एक दिन रात में करीब करीब 10-11 बजे विश्राम कर रहे थे सब लोग, और हम लोग उसको कुछ कर रहे थे, किमटी काट रहे थे, और वो जोर से चिल्लाए गुरु जी उठ करके, और उसको जाकर के अपना जूता उठा करके जूता से दो एक जूता उठ, और हम लोग भाग गए थे। दूसरे दिन जाकर के गुरु जी से नालिश करता है, गुरु महाराज एरा अमर के काल के धरे अमर के पीटिए छे एरा, और अमर के नाना प्रकार संकट छे, गुरु जी और की बोलने तीन मुस्कुरा करके बस हो, बहुत उसको स्नेह करते थे, हम लोग उनको आदर करते थे, तभी हम लोग का स्वभाव ऐसा, तो हम समझते हैं, अब विचार करते हैं कि वो धन्य, उसके जितना विवेक जितना जो कुछ था निष्कपट एक पैसा भिक्षा करके एक पैसा अधेला नहीं रखता था, अधेला नहीं रखता जो कुछ होता था गुरु जी को। इतने वो थे ऐसे कल गुरु जी हमको यदि हरिनाम दे देंगे तो मैं कल से भिक्षा खूब करूंगा, फिर हरिनाम हो गया हमको यदि भिक्षा देंगे तो अधिक भिक्षा करूंगा। अच्छा तो उन्होंने कहा कि हमको यदि बाबा जी वेश दे देंगे तो मैं जरूर करूंगा, तो बाबा जी भी वेश उसको दे दिया। देखो परमहंस वेश उसको परमहंसी वेश तो, इसलिए मूर्खता बड़ी नहीं है भगवान का। एकांतिक रूप में यदि मूर्ख भी पशु पक्षी कीट पतंग ही करते हैं तो उस जगत के वंदनीय और पूज्य हो जाते हैं। हम लोग भी उनकी मनी मन में वंदना करते थे, पूजा अभी भी कर रहे हैं। इसलिए भाई वो बुद्धि शुद्धि कोई काम नहीं आ गई, वही आदमी बुद्धिमान है जो कि कीर्तन यज्ञ के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जी की उपासना करते हैं। क्या श्लोक तो क्या कृष्ण ये मूर्खों ने से किया, कृष्ण उसको वंचित कर दे अपने पास नहीं आने देंगे मूर्खों को, जो कुरूप है उनको कृष्ण अपने पास में नहीं आने देंगे, जो दरिद्र है उनको भगवान नहीं आने देंगे। यदि वो हृदय से भगवान को पुकारता है तो कृष्ण उसको ग्रहण करता है। उनके लिए शरीर का कोई मूल्य नहीं, आत्मा का मूल्य। किंतु जो शरीर भगवान का भजन करता है वो भी पवित्र बन जाता है, जगत के लिए वंदनीय हो जाता है। हाँ कृष्ण को ये अधन्न ये हिरण्य प्रणयावलोकन के द्वारा विरचित संभार, संभार माने कहते हैं उपकरण, प्रणय लोकन ये प्रदीप घी का मिला हुआ प्रदीप और सब उपकरण हैं ये विरचित उपकरणों के द्वारा इनकी पूजा किया। आंखों के द्वारा विचित्र विचित्र भावों के साथ में उनकी पूजा हो सकती है, वही कर सकते हैं जो इस विषय को जानते हैं, प्रेम रस को जानते हैं वो लोग कर सकते हैं। हाँ भाव कुसुम, कितने तरह के भाव कुसुम हैं, एक दो नहीं। वो कृष्ण से बातचीत करती हैं कैसे, अपने अवलोकन के द्वारा दृष्टिभंगी के द्वारा। बुलाना होगा तो कृष्ण को बुला लेंगी, आंखों से ही बुलाएंगे, आंखों से बातचीत करेंगे, आंखों से हंसेंगे, आंखों से हृदय की भावनाएं व्यक्त करेंगे और उनके भावों को समझ लेंगे। किंतु कौन, जिनके हृदय में प्रेम है, और जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वो नहीं कर सकते। कृष्ण भी दूसरों की तुलना में ऐसे वैसे कृपा अवलोकन करके, कृष्ण भी उसके बदले में उनके तरफ प्रणय से अवलोकन करके उनकी पूजा को ग्रहण करते। यहां पर ही धन्याश्म मूढ़ मतयो अपि अथवा बी शब्द विरचितम, विरचितम कहिए उन्हीं के द्वारा यह संभव, यह संभव ऐसा प्रेम विदेश से जो व्यक्ति है उसी के लिए यह संभव है, दूसरों के लिए नहीं। घर में 50 नौकर हैं, बहुत बड़े आदमी 50 नौकर, कोई 500 कोई 600 कोई 1000 रुपया महीने, कोई 10000 रुपया भी महीना ले रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, और पत्नी कुछ नहीं करती, उसकी बेटी कुछ नहीं करती, बेटा कुछ नहीं करते, उसकी पत्नी भी कुछ नहीं करती, रसोई दूसरे बना रहे, सब काम कर रहे हैं। ये एक बार बाहर से आएंगे हंस करके उसे 2-4 बातें कर लेती हैं, बस अपना सर्वस्व उसको दे देते, उनको तो महीना देंगे और इसका सर्वस्व उनका है, उनकी संतान का। किस लिए? बस आपको सही बातें हो जाएंगी, अपने प्रेम को दूसरे के प्रति प्रकाशित करेंगे। और यदि कोई किसी से मेल प्रीति नहीं है तो आंखें बतला देगी कि इसके प्रति हम कुछ नहीं है, आंखें सुनी रहेंगी सार रही, उसको व्यक्ति समझ लेता है। वी कैन नो दिस पर्सन हैज सम अफेक्शन फॉर मी और नॉट बाय सीइंग द फेस, स्पेशली व्हाट इज फेस, आई। बट इन फेस ऑल्सो द आईज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए और भी करें कृष्ण साथ अर्थात तुष्य पति के सहित आगमन करती हैं। कोई भी पुरुष जाति में ऐसा नहीं करेगा, कोई भी, बहुत संकीर्ण है, साधारण लोगों के लिए मना है। यहां तक कि ऐसा भी देखा जाता है कि किसी भी दूसरे पुरुष को पैर छूकर कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा भी लगा पति को भी परमेश्वर जान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। वो लंगड़े लूहे सब कुछ हो तो भी, अर्थहीन हो सब प्रकार से, किंतु ये कहीं नहीं लिखा गया कि यदि भक्ति से रहित है तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए, ये नहीं। स्मार्ट पुस्तकों में वैसा हो सकता है किंतु भक्ति की पुस्तकों में ऐसा नहीं। बंशीनाथ के श्रवण से हिरण्या आत्महारा होगा, आत्महारा माने अपने आत्मा को भी खो करके कृष्ण लेकर के बंसी में चले गए, खो करके बंसीधारी के तरफ में जहां से वेणी ध्वनि आ रही है उधर में दौड़ती है, अग्रसर होती है। वनमाला गुंजा इत्यादि निर्मित विचित्र वन्य वेश को देख करके हमारे प्रियतम जो कृष्ण हैं उनको देखती है। वो हमारे कृष्ण होकर के हम नहीं देख सकती और ये देख सकती। उनके पति भी उस समय रहते हैं, इनको फुर्सत नहीं है जो अपने पति को देखे ये क्या हमारे पीछे आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, नहीं। किंतु वो भी कृष्ण सार इसलिए है, कृष्ण को ही सार बना रखा है, उनके जीवन के भी कृष्ण सार है। यद्यपि ऐसा प्रेम उनमें नहीं है जैसा इन हरिणियों में है। यद्यपि ये मूल जाति के हैं, तिरजग माने क्या? यही पशु थावर जंगम कृमिकी मनुष्य इसको सुन करके सचमुच मूड हो रही है। यदि अर्थ ले मूड हो रही, मूड माने क्या? विवेक सब खत्म, क्या हमारा पति करेगा, समाज क्या करेगा, संसार वाले क्या कहेंगे, ये सब भूल जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में बतलाया गया एते एता
परम
तनुभित वो नहीं नहीं ये नहीं एक अप, हाँ एवं व्रतस्य प्रिय नाम कृत्या जाता नुरागो दुदच्युत उच्च। जाता अनुरागो माने क्या? जात अनुराग हो गया है, अनुराग जात उसमें उत्पन्न हुआ। ऐसे जो लोग हैं वे लोग जाता अनुरागो जित चित्त उच्च उनका चित्त द्रवित हो जाता।
लज्जा धूल कलकानी इत्यादि सब कुछ को छोड़ करके वे हमारा कीर्तन और श्रवण और नित्य गीत इत्यादि राधे राधे गोविंद।